معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی کہانی خاموشی کے ساتھ شمس بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ کہانی میری اشاعت شدہ کتاب امید بیچتا ہوں سے ہے۔ ذرا ڈفرینٹ کائنڈ کا جانرا ہے، سمجھیں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس جانرے میں بھی لکھا جائے، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی فیڈ بیک اس کے بارے میں ضرور ملے۔ آپ لوگ اگر میرا کام پسند کر رہے ہیں، جس کا بہت بہت شکریہ، پہلے تو اس بات کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرا کام پسند کر رہے ہیں، کیونکہ جن نمبر سے یہ کہانیاں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ میرا کام پسند کر رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹ ضرور کریں۔ اس پوڈ کاسٹ میں موجود تمام کہانیاں اب آپ یوٹیوب پر بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کہانی کا نام لکھ کر سرچ کر لیجئے، یا میرا نام شمس بھٹی لکھ کر سرچ کر لیجئے، یا امید بیچتا ہوں کا نام لکھ کر سرچ کر لیجئے۔ امید ہے کہ آپ کہانی آپ کو وہاں پر مل جائیں گی۔ تو جناب، چلتے ہیں آپ کی کہانی کی طرف۔ تو آج کی کہانی، جیسے میں نے عرض کیا، اس کا نام ہے خاموشی۔ قبرستان، جنہیں شہر خاموشاں بھی کہا جاتا ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہماری کہانی کا انجام، جیسے زندگی کے دوسرے رنگ ذات کے کینوس پر مصوری کرتے ہیں، ویسے ہی ہر گاؤں، ہر قصبے اور ہر شہر میں قبرستان بھی عبرت کی چھابڑی لگائے کسی نہ کسی گلی یا کسی نہ کسی نکڑ پر بکھرے رہتے ہیں۔ شہادت کا کلمہ پڑھتے لوگ مر جانے والوں کو کندھے پر اٹھائے آتے ہیں اور زمین کے سپرد کر کر چلے جاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تو یہاں کبھی آئیں گے نہیں۔ عبرت بھی اللہ کی توفیق ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ میرا گاؤں پنجاب کا ایک چھوٹا سا گاؤں جھاوریاں، دریائے جہلم کے قریب واقع ہے۔ اس قبرستان سیلاب کے رستے پر آباد ہے۔ جب بھی سیلاب آتا ہے، نہ جانے اس قبرستان سے کیا لے جاتا ہے، کیا چھوڑ جاتا ہے۔ لوگ پھر سے اپنے پیاروں سے اس کی زمین کو سیراب کرنے لگتے ہیں۔ جھاوریاں سے کچھ فاصلے پر کالرا کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ وہاں ایک وی آئی پی قبرستان ہے، یعنی شہر خاموشاں کی جیتی جاگتی تصویر۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں نے اس قبرستان میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ اب تو وہاں کوئی مر کر بھی نہیں جاتا۔ کچھ اور آگے آئیں تو پنڈی کا ایک اور چھوٹا سا گاؤں ہے۔ سڑک اس قبرستان کے بیچوں بیچ گزرتی ہے، ایک چھوٹی سی مسجد، چند قبریں اور وان کے درخت۔ ان تین قبرستانوں کو ایک سڑک مالا کے دانوں کی مانند پروتی ہوئی سرگودا شہر کی طرف رواں دواں ہے۔ ہانپتے اور پسینے سے شرابور انسانوں سے لدی بسیں ہوں یا گنے کے بوجھ تلے کراہتے ٹریکٹر ٹرالی، سڑک پر سانپ کی طرح سنسناتے موٹر سائیکل ہوں یا موت کو دعوت دیتے سائیکل سوار، مویشی، انسان، سب اس سڑک پر دن بھر یہاں سے وہاں دندناتے پھرتے ہیں۔ لیکن جب رات ہوتی ہے تو کہانی بھی بدل جاتی ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن میں کسی کام سے جھاوریاں گیا۔ مصروفیات کی وجہ سے دیر ہو گئی اور نکلتے نکلتے رات کے 10 بج گئے۔ سب نے کہا کہ وقت اکیلے سفر کرنے کا نہیں، جب لکھا ہو تو کون ٹالے۔ میرے پاس ایک یامہا 80 ہوا کرتا تھا۔ پیٹرول چیک کیا، بتی اور اشارے جلا کر دیکھے، سب ٹھیک کام کر رہے تھے۔ گھر والوں سے اجازت لے کر اللہ کا نام لیا اور سرگودا کی طرف روانہ ہو گیا۔ سرگودا جھاوریاں سے کوئی 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بس نکل پڑا اور بھول گیا کہ مستقبل میں تو کوئی روشنی جھانک نہیں سکتی، میری بیچاری موٹر سائیکل کی بتی کیا جھانکتی۔ جھاوریاں سے نکلا تو تھوڑی ہی دیر میں کالرا پہنچ گیا۔ کالرا کا قبرستان ہمیشہ کی طرح اکیلا بیٹھا تھا۔ اب تو اس سے ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ ہوا کے دل فریب تھپیڑے چہرے اور جسم کو سہلا رہے تھے۔ چاند گھنے بادلوں کے پیچھے روپوش تھا اور سڑک پر روشنی کا کوئی انتظام بھی نہ تھا، لیکن راستے کا تعین کرنے کے لیے موٹر سائیکل کی روشنی بہت تھی۔ کالرا گزر گیا اور کچھ دور بل کھاتی سڑک نظر آنے لگی، جسے پنڈی کے قبرستان کے بیچوں بیچ میں سے ہو کر گزرنا تھا۔ मैं यहां से हजार बार गुजरा था, आदत थी, सो हवा के थपेड़ों का लुत्फ उठाता चलता गया। रफ्तार मैंने कम ही रखी क्योंकि रात का वक्त था और सड़क का हाल भी बस पतला ही था। पिंडी का कब्रिस्तान अब करीब आ चुका था। कब्रिस्तान में लगे वण के दरख्त की एक बहुत खास बात है, इसकी मसवाक बहुत उम्दा होती है। क्यों ना हो, इसके नीचे कार्बन, कुछ कैल्शियम, पोटाशियम और न जाने किन किन मादनियात के अंबार लगे रहते हैं। इसकी जड़ें इन खजानों से रस चूसती हैं और फिर जिंदा इंसानों के दांतों को जला बख्शती हैं। कायनात में कुछ भी रहगा नहीं जाता, मट्टी का पुतला भी नहीं। कब्रिस्तान अब और करीब आ गया और धुंधलके में उसकी अंधेरी मस्जिद, कब्रों के मध्यम निशान और खामोश खड़े वर्ण के दरख्त नजर आने लगे। कुछ ईमान बाकी था शायद, इसलिए रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर सी दौड़ गई। जड़ से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजून पढ़ा और पढ़ता चला गया। जैसे ही मस्जिद के सामने पहुंचा तो दो धमाके हुए, मोटरसाइकिल बुरी तरह से डोल गया। करीब था कि मैं अपना तवाजुन खो देता, लेकिन जैसे तैसे बगैर गिरे मैं मोटरसाइकिल रोकने में कामयाब हो गया। कुछ लम्हे तो हवास बाखता रहा, फिर गौर से सड़क पर देखा तो वजह मालूम हुई। किसी ने सड़क पर कील फेंक रखे थे या फिर हादसाती तौर पर गिर गए होंगे, लेकिन इस दानिस्ता या हादसाती गलती ने मेरे मोटरसाइकिल के दोनों टायर बयक वक्त नकारा कर दिए थे। अब जब हरकत रुकी तो हर चीज साकिन हो गई और एक इरताश ज्यादा सुकूत तारी हो गया। फैसले की घड़ी आन पहुंची। अब क्या करना था? अगला कस्बा लकमोड़ तो बहुत दूर था और झावरियां भी काफी फासले पर था। करीब तरीन गांव कालरा ही था, इसलिए सोचा कि वापस कालरा चला जाऊं और कोशिश करूं कि इस मुश्किल का कोई मदावा हो। कालरा भी कोई 3-4 किलोमीटर के फासले पर था, जो इतना ज्यादा तो ना था। अपने इर्द गिर्द देखा तो जैसे अथाह समुंदर के बीचों बीच अपने आप को तन्हा खड़ा पाया। अंधेरा आसमान, अंधेरी जमीन और दरख्तों की शक्ल में तन कर खड़े खामोश तमाशाई। इनके ऐन दरमियान में मोटरसाइकिल के पिस्टन के दिल की धड़कन जैसी आवाज, तारीकी की चादर में हल्का सा रखना डालती हुई मोटरसाइकिल की बत्ती और शशोपंच की तस्वीर। मैं, ये इलाका ज्यादातर जरई जमीन पर मुश्तमिल है, मुजारों के डेरे हैं लेकिन बहुत फासले पर। ज्यादातर जमीन पर फसल उगी है या सरकंडे लगे हैं। अंधेरा इन कुदरती नेमतों को वीरानी में बदल देता है। रात के इस पहर या तो यहां मजारों के कुत्ते दंदनाते फिरते हैं या आवारा कुत्ते अपने हदूद का तायुन करने की सही में मशगूल रहते हैं। इनको किसी भी किस्म का अजनबी पसंद नहीं। कुत्तों की इन दोनों नस्लों के माशर्ती इकदार इंतहाई मशकूक होते हैं, इसलिए उनसे नरमी या हमदर्दी की तवक्को रखना किसी दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। ज्यादातर रात के सपहर ये भौंकते कम और काटते ज्यादा हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ते हुए इस खौफनाक आवाज से दूसरे कुत्तों को मुतवज्जो करने के लिए भौंकते हैं कि दिल सीना फाड़ कर बाहर निकलने लगता है। ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, माहौल का अफरीत मेरी तलाश में सरगर्दां हो गया। हर मुमकिन सिमत से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थीं। उनके मुंह से निकलने वाली झाग, उनके भौंकने में हिर्स का जो अंसर पैदा कर रही थी, उसे मैं इस दूरी पर भी महसूस कर सकता था। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने बस जल्दी से मोटरसाइकिल बंद कर दिया और बत्ती बुझा दी कि शायद खामोशी से मायूस होकर वापस लौट जाए। ये करने से यकदम मेरे इर्द गिर्द कब्र का सा अंधेरा हो गया। चांद का आसरा तो पहले ही न था, रोशनी की एक किरण थी जो मैंने बुझा दी। खुशगवार हवा के झोंके जो पहले मेरे चेहरे को सहला रहे थे, पहले खामोश हुए और फिर अनसुनी आवाजों में बदल गए। जिंदगी का चक्कर भी अजीब है, जब शोर मचा हो तो बहुत सी आवाजें इस शोर में गुम हो जाती हैं और सुनाई नहीं देती, खास तौर पर वो आवाजें जो हम सुनना नहीं चाहते। ये कहना कि खामोशी है, इससे बड़ा तो कोई झूठ है नहीं। दुनिया में कभी खामोशी नहीं होती, जब तक सांस चलती है खामोशी नहीं होती। फर्क सिर्फ ये है कि बाहर का शोर खत्म होते ही अंदर हिजान बपा हो जाता है। फिर वो आवाजें आती हैं जिन्हें कान नहीं सुन पाते पर रूह को सुनाई देती हैं, जैसे दिल की धड़कन, सांस का चलना। आपके जहन में खामोशी की चादर ओढ़े वहम, वसवसे और डर, वो आवाजें जो आप हजार बार सुनते हैं और अनसुनी कर देते हैं, खामोशी की चादर फैलते ही ये सब आवाजें एक वहशतनाक हद तक चिल्लाने लगती हैं। यही हुआ। कुत्तों की मेरी तरफ बढ़ती हुई आवाजें, बचपन से लेकर उस लम्हे तक सुने हुए डरावने किस्से, जादू की कहानियां, जिन भूतों के वसवसे और अपने ही डर की तखयल करदा सदाएं, सब मेरे गिर्द जमा होना शुरू हो गई। हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि घर, चार दीवारी, अपने प्यारे दोस्त यार या महज दूसरे इंसानों का वजूद हमें कितनी अनदोहनाक खामोश सदाओं से महफूज रखता है। एक तो तन्हाई, गुप अंधेरा और तेजी से रुख बदलती आवाजें। एक लम्हे को तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कब्रिस्तान के बीच में खड़ा हूं, मुझे हवा ने याद दिला। वन का दरख्त तो जैसे कब्रिस्तान के लिए ही बना है, उसका तना शरियानों की मानद लच्छेदार और उसकी टहनियां आपस में गलत मलत होते नकूश की मानद होती हैं। उसके पत्ते छोटे लेकिन घने होते हैं। इन छोटे छोटे पत्तों की घनी बांसुरी से जब हवा छन कर गुजरती है तो एक सिसकी जैसी आवाज आती है। हमें आमतौर पर यह सुनाई नहीं देती, लेकिन जब तन्हाई हो, अंधेरा हो और कोई आवाज भी ना हो तो सिसकियों की ये आवाजें जोर पकड़ जाती हैं। मुझे जैसे ही इन सिसकियों की आवाज आई, मैंने अपने माहौल को समझने के लिए गौर से कब्रिस्तान की तरफ देखा। गलती थी, मुझे अंदाजा था कि मैं कहां हूं। अकली तकाजा तो यह था कि गौर व गौज की बजाय मुझे मोटरसाइकिल मोड़ कर वापस चल देना चाहिए था, लेकिन खैर, लिखे को कौन टाले। मैंने जब गौर से अंधेरे में झांका तो दूर एक कब्र पर एक छोटे से शोले को नाचते देखा। दिया होगा, कोई रख गया होगा। दिया भी क्या चीज है, एक हल्का सा शोला है जो धागे की एक कन्नी पर महवे रक्स रहता है। चूंकि बहुत छोटा है इसलिए महज इरताश पर भी नाचता है। हां, जब अंधेरा गहरा हो तो इस छोटे से शोले के साए बहुत लंबे होते। अब जब गौर किया तो वो थरकता शोला इन दरख्तों के सायों में तब्दील हो गया। खामोश और पुरसकून दरख्त उस लय पर हल्के हल्के झूमने लगे। बेजा गौर नहीं करना चाहिए चीजों पर। शायद जिंदगी का एक असूल यह भी है कि राह में अगर कील पड़े हों और मोटरसाइकिल के टायर पंक्चर हो जाएं, तो बस मंजिल और मंजिल कोई जाति समत का तायुन कर लें। शायद कभी आपके मोटरसाइकिल छोड़ कर जाना पड़े या साथ साथ घसीटना पड़े। किसी भी सूरत में जिंदगी की हरकत को रुकने ना दें। जाए हादसा को जाए हादसा समझकर पीछे छोड़ जाएं। वहां रहकर वजूहात या नताइज की बहस में मत पड़े, क्योंकि जब आप इस खराबी के लम्हे पर गौर करते हैं तो उसके असीर हो जाते हैं और आपको इस जगह के इबलीस से नबर्द आजमा होना पड़ता है। हाँ, अगर आप अपना सफर जारी रखें तो इस सूरत में उस जगह का अफरीत आपको डरा नहीं सकता, पीछे रह जाता है। मैं अब इस अंधेरे के अफरीत का कैदी हो चला था। मेरे अंदर के वहमों और वसवसों ने भी मेरा साथ न दिया और लगे झूमने। यही क्या कम था नजर झुकाकर देखा तो किसी की कब्र पर खड़ा था। इंसान कमाल की चीज है, धरती पर चलता फिरता हो तो सरमाया हयात, इश्क की मेराज और कंदील जिंदगी। हां, अगर जमीन के नीचे चला जाए तो उसकी निशानी से भी डर लगता है। आपका कोई बहुत प्यारा जब खुदा को प्यारा हो जाए और जमीन की अथाह गहराइयों में जा बसे तो ऐसा पराया होता है कि अगर ख्वाब में आए तो भी वहम उठते हैं, याद आए तो रुला देता है, उसकी तस्वीर देखो तो माजी हाल पर मुसल्लत होने लगता है। हम जमीन के इन बासियों से बस किनारा चाहते हैं। गौरतलब बात यह है कि हम जिंदगी में दूसरों को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करते, कैसी कैसी कुर्बानियां नहीं देते, कहां कहां जात की नफी बर्दाश्त नहीं करते, कब कब बेतौजीह की अजियत से नहीं गुजरते कि दूसरे खुश रह सके, आपको समझ सके। लेकिन एक दफा अगर हमेशा के लिए खामोश हो जाएं, तो आपकी याद, तस्वीर, ख्वाब, निशानी सब निशान इबरत बन जाता है। हमारा दुनिया से बस इतना सा ही ताल्लुक है, समझ आ जाए तो अच्छी बात है और ना समझ आए तो भी चलता है। अपने आप को कब्र पर खड़ा देखकर मैं बिदक कर पीछे हो गया। मुझे यूं लगा जैसे मैंने अंधेरे में कुछ देखा हो, कुछ तो हरकत में था, सांप या बुच्छू होगा, और इस या ने मेरे हवास बाख्ता कर दिए। सर के पिछले हिस्से से यख बस्त लहर उठी और पांव जहां थे वहीं जम गए। दरख्तों का रक्स वजदानी हो गया, कब्रें और पेड़ यकजा हो गए और सिसकियां आहों और चीखों में बदल गईं। कुत्तों की आवाजें भी अब नजदीक आ चुकी थीं। मैंने चीखना चाहा तो चीख ना सका, आवाज गले में ही घुट कर रह गई। ऐसे में मेरे ऐन अकब में कोई हरकत हुई, पत्ते चटखे और कोई मध्यम कदमों से मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरा तो खून खुश्क हो गया। दूर मेरी मोटरसाइकिल किसी लावारिस लाश की मानद ऊंधे मुंह पड़ी थी और सदियों का फासला था। इस वक्त इस लम्हे कौन हो सकता है, खुदा करे कोई इंसान हो, लेकिन इंसान इस वक्त यहां क्यों आएगा, तो फिर कौन। अब पत्ते तवातर से चटकने लगे। मैंने इज़्तिराब में इधर उधर देखा कि कोई लकड़ी, कोई टुकड़ा, कोई ईंट अपनी हिफाजत के लिए उठा लूं, लेकिन कुछ ना मिला। कब्रें अब खामोश थीं और उनका अंधेरा उनके अंदर से बाहर निकलकर फैल गया था, कुछ दिखाई न देता था। चारों नाचार पीछे मुड़कर देखना चाहा तो जिस्म शल हो गया। हिम्मत बधाई, चारकोल पड़े, अल्लाह का नाम लेकर मुड़ा। कब्रिस्तान के किनारे पर एक हियोला अपने कदम गिनता मेरी जाने बढ़ रहा था। यकदम सब आवाजें खामोश हो गई। अब सिर्फ पत्तों के जोड़ टूटने और दिल के धड़कने की सदाएं आ रही थी। हियोला मेरी तरफ बढ़ता रहा, स्याह, बेशकल, बेवदे और खामोश। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि मेरी तरह का कोई इंसान होगा, लेकिन इसकी बेहंगम धुएं जैसी वजह मेरी सब दलीलों की नफी करती थी। मैं जामित खड़ा रहा और वो मेरी तरफ बढ़ता रहा। मुझे अपने अकब में टहनी टूटने की आवाज आई तो मैंने बिदक कर पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। वापस मुड़ा तो अफरीद मेरे सामने खड़ा था। अनकरीब मैं भी इन पथराई हुई लाशों में शामिल होने को था। वो एक कदम बढ़ा और फिर दूसरा और फिर तीसरा और फिर मेरे वजूद से हवा की मानंद गुजर गया। एक लम्हे को तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी रूह कब्ज कर ली गई हो। मैं अपने रहे सहे सांस समेटने की सही करने लगा। मैं घबरा कर मुड़ा तो वो इसी मौत की इसी खामोशी के साथ बढ़ता जा रहा था। मेरे सर के ऐन ऊपर वन के दरख्तों ने पहले सिसकी और फिर आखिरी हिचकी ली। अब कि जब वह हियोला मुड़ा तो उसके चेहरे में दो अंगारे दहक रहे थे। उसकी आंखें शोले उगल रही थीं, मगर बाकी जिस्म वैसे ही वीरान था। फिर वो बड़ा होने लगा, बहुत बड़ा, पहाड़ से भी बड़ा। उसकी आंखें शोलों के उकब से मुझे घूर रही थीं। मैंने अपने आप को मौत के लिए आमादा कर लिया। यकदम वो अफरीत इतनी जोर से चीखा कि जमीन दहल गई। मेरे तो जैसे कानों के पर्दे फट गए। उसकी दिलदोज चीखों ने बिलाखिर मेरे गले का बंद भी तोड़ दिया और मैं भी उसी जोर से चिल्लाने लगा। अब वो अफरीत अपनी तमाम तर रौनत और वहशत के साथ मेरी तरफ भाग रहा था। उसका खून उगलता मुंह और शोले उगलती आंखें मुझे अपने अंदर समेट लेने को बेताब थी। मैं बेचैन मुजस्मे की तरह बेबसी से अपनी मौत को अपनी तरफ बढ़ते देखता रहा और कुछ ना कर सका। इस बार वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने जब अपना मुंह खोला तो मुझे उसके गले के पार दोजख नजर आया। उसका मुंह खुलता गया। एक लम्हे में मैं जिंदा दरगोर होने के था कि आसमान फटा, अंधेरे की चादर नूर की एक किरण ने तार तार कर दी और दूसरे ही लम्हे में रोशनी में नहा गया। ज़हनी तौर पर मैं मौत को कबूल करने के बाद किसी मौजज़े का मुंतज़िर नहीं था, लेकिन इस नूर की बारिश ने मेरे घुटनों से रही सही जान भी खींच ली। मैं बेबसी से घुटनों के बल ज़मीन बोस हुआ। रोशनी का रेला मुझ पर मुंजमित था। हिम्मत करके उस नूर के मंबा की तरफ देखा तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली की बड़ी बड़ी बतियाँ नजर आईं, जो अभी आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की बलखाती सड़क पर मोड़ काट रहा था। मैं जिंदा हूं। मैं बस यही चलाता हुआ ट्रैक्टर की तरफ भागा। मुझे देखकर ड्राइवर ने ट्रैक्टर रोक लिया और मेरा चेहरा देखकर परेशान हो गया। मैंने अपने हवास संभाले और उससे उसकी मंजिल का पता पूछा। उसके मुंह से झावरियां का लफ्ज सुनकर मेरी जान में जान आई। मोटरसाइकिल ट्रॉली के पिछले हिस्से में रखकर ट्रैक्टर पर चढ़ने से पहले मैंने मुड़कर कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ सिर्फ खामोशी थी।